नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समुदाय के युवाओं को सशक्त बनाने और उनका उत्थान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य के प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपने जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तब सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाएं केवल वित्तीय सहायता का साधन नहीं है, बल्कि ये युवाओं को सपनों को देखने का अधिकार देती हैं। गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशाटिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन आज मुंबई पहुंचे। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने उनका स्वागत किया। प्रोटोकॉल मंत्री जयकुमार रावल भी हवाई अड्डे पर उपस्थित थे। राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन आज मुंबई में व्यापार और उद्योग जगत से बात करेंगे और विभिन्न स्थलों का दौरा करेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं और उन्हें बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दें तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल तक आंतरिक कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में तेज बारिश का अनुमान है। अगले 2 से 3 दिन तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण और गोवा, महाराष्ट्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।